नया भावबोध, नई समीक्षा। छायावादी काव्य चेतना की उच्छ्वसित भावाभिव्यक्ति, इंद्रधनुषी कल्पना विधान एवं वैयक्तिक जीवन दृष्टि की प्रतिक्रिया में जीवन यथार्थ की अभिव्यक्ति पर बल देने वाली मार्क्सवादी जीवन दर्शन से प्रभावित प्रगतिवादी काव्य चेतना भी हिंदी के काव्य संसार को अधिक प्रभावित नहीं कर सके। कारण यह था कि उसमें राजनीतिक विचारों की अभिव्यक्ति का आग्रह अधिक और कवित्व कम था। 1942-43 ईस्वी तक आते आते उसका आकर्षण कम होने लगा। संभवतः इसका एक कारण यह भी था कि प्रगतिवादी काव्य को मार्क्सवाद के प्रति प्रतिबद्ध या उससे सहानुभूति रखने वाले रचनाकारों से एकाकार करके देखा जाता था, और कम्युनिस्ट पार्टी की गतिविधियां प्रगतिवादी काव्य चेतना के प्रति हिंदी साहित्य जगत के रुख को प्रभावित करती थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति ने 1942 ईस्वी के अगस्त क्रांति के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया था। यही नहीं, उसने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में संप्रभुता संपन्न राज्य की स्थापना के बारे में मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव का समर्थन भी किया था। उस समय तक यह भी प्रकट हो चुका था कि प्रगतिवाद की सीमा में बंद कर चलने से काव्य की प्रकृति भूमि पर्याप्त संकुचित होती जा रही है। इस प्रकार छायावाद और प्रगतिवाद दोनों की सीमाओं से मुक्त होने पर अभिव्यक्ति के नए मार्ग का अनुसंधान आवश्यक था। संभवतः इसलिए 1943 ईस्वी में तारसप्तक के प्रकाशन के समय उसमें संग्रहित सभी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया। काव्य यात्रा के क्रम में नई राह के अन्वेषण का प्रश्न क्यों उठा? निश्चय ही उस समय तक युग संदर्भ बदल चुका था। परंपरागत भाषा, छंद, अलंकार विधान, ध्वनि योजना, प्रतीक एवं बिंब नवीन युग की संश्लिष्ट जटिल संवेदना का साथ नहीं दे पा रहे थे। वस्तुतः द्वितीय महायुद्ध ने विश्व मानव को नए सिरे से सोचने के लिए बाध्य कर दिया था। पहले महायुद्ध के बाद से ही काल यास्पर्श 1883 से 1974 ईस्वी जैसे विचारक यह अनुभव करने लगे थे कि आधुनिक कल्याणकारी शासन के विशाल मशीनी संगठन में मनुष्य एक मामूली पुर्जा बन चुका है, और यह वह निजी तत्व, अंतरात्मा और आध्यात्मिक धुरी सब कुछ खोता जा रहा है। काल यास्पर्श अस्तित्ववादी विचारक था। यद्यपि सन 1942-43 ईस्वी तक हिंदी कवियों पर अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रभाव नहीं पड़ा था, किंतु विज्ञान के बढ़ते प्रभाव और उसके परिणाम स्वरूप उत्पादन के साधनों के केंद्रीभूत होने, महानगरों के उगने तथा यांत्रिक सभ्यता की प्रभाव वृद्धि के कारण मनुष्य के पदार्थीकृत होने की प्रक्रिया से जो नए भावबोध की सृष्टि हो रही थी, उसकी जटिलता का अनुभव हिंदी कवियों को होने लगा था। तारसप्तक के प्रमुख कवि अज्ञेय ने अपने तत्कालीन वक्तव्य में जीवन की जटिलता, स्थिति परिवर्तन की असाधारण तीव्र गति, कवि की उलझी हुई संवेदना, विचार संयोजनाओं में विषमता, पाठकों की जीवन परिपाटियों में वैषम्य और इन सब के चलते साधारणीकरण और कम्युनिकेशन संप्रेषण की समस्या का प्रश्न उठाया था। दूसरे महत्वपूर्ण कवि मुक्तिबोध ने स्वीकार किया था 1938 से 1942 तक के 5 साल उनके मानसिक संघर्ष और वर्ग शोषणीय व्यक्तिवाद के वर्ष थे। उन्होंने यह भी कहा था कि मानसिक द्वंद्व उनके व्यक्तित्व में बद्ध मूल हैं। उन्होंने अनुभव किया था कि तत्कालीन जीवन वैविध्यमय उलझन से भरा और रंग बिरंगा था। इसी जीवन की अभिव्यक्ति के लिए वे काव्य प्रयोग कर रहे थे। तीसरे बड़े कवि गिरजा कुमार माथुर थे तो तारसप्तक को आधुनिक बोध की काव्यधारा की प्रथम संवेद अभिव्यक्ति मानते हैं। वे तो यहाँ तक कहते हैं कि मंजीर के प्रकाशन काल अप्रैल 1941 ईस्वी में ही आधुनिक बोध के अनुरूप नगरीय संवेदना इतिहास की सांस्कृतिक दृष्टि तथा भाषा छंद बिंब और ध्वनि विधान के नवीन रूपाकार की प्रस्तावना अपनी रचनाओं में वे कर चुके थे। उनका प्रस्ताव है कि आधुनिकता की प्रक्रिया का प्रथम उन्मेष 1940 ईस्वी से 1952 ईस्वी तक मानना चाहिए और द्वितीय चरण 1953 से अब तक 1963 ईस्वी। वे कहते हैं, मेरी दृष्टि में प्रथम उन्मेष के प्रधान तत्व थे परिवेश के प्रति गहरी जागरूकता, सामाजिक यथार्थ की चेतना, इतिहास का प्रथम बार तीव्र बोध, भाव जगत में सूक्ष्म प्रतिक्रियाओं की पहचान, युद्धगत संक्रांति की मानवीय संवेदना, अंतर्राष्ट्रीय उन्मुखता, नवरोमान और परिवर्तित मूल्यों की टकराहट, दूसरे चरण में निकटतम सत्यों की संवेदना, संक्रांति की विडंबनाओं का एहसास, व्यंग और विपर्यय, मूलगत विकृति, आत्महीनता, जीवन की विसंगतियों, एब्सर्डिटी की अभिव्यक्ति, वैज्ञानिकता का उदय, आमरस अनुभूतियों का आस्वाद मुख्य प्रमुख स्वर है। माथुर साहब का प्रस्ताव मान्य है और या अमान्य, हम इस पर विचार नहीं करना है। यहाँ हम इतना ही कहना चाहेंगे कि 1942-43 ईस्वी तक आते आते हिंदी के कवि तत्कालीन जीवन की जटिलता से उत्पन्न नए भावबोध का एहसास करने लगे थे और तदनुकूल अपनी कविता के संरचनात्मक ढांचे में परिवर्तन की प्रक्रिया का आरंभ कर चुके थे। उनके इस प्रयत्न का आरंभिक चरण प्रयोग काल और द्वितीय चरण नई कविता का काल कहा जाता है। नई कविता को सामान्यतः आधुनिक भावबोध की कविता माना जाता है। वस्तुतः 19वीं सदी में यूरोप में जो अभूतपूर्व तकनीकी विकास हुआ, उसकी दो परिणतियां हुई। एक ओर तो मनुष्य का यंत्रीकरण हुआ और वह अपनी अस्मिता खोकर पदार्थ बन गया। दूसरी ओर पूंजी का केंद्रीकरण हुआ और अनवरत शोषण की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे संपन्न और विपन्न के बीच खाई बढ़ती गई। इसी सती में दो महान विचारक सामने आए, सोरेन और किर्कगार्ड 1813 से 1855 ईस्वी और कार्ल मार्क्स 1818 से 1883 ईस्वी। किर्कगार्ड ने मानव अस्मिता का प्रश्न उठाया और अस्तित्ववाद का प्रवक्ता बना। कार्ल मार्क्स ने पूरी समाज व्यवस्था को केंद्र में रख कर सोचा और ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रवर्तक बना। 20वीं सदी में यूरोप के को दो दो महायुद्धों की ज्वाला में जलना पड़ा। इन युद्धों में मानव ने अपने को नितांत नगण्य पाया। उसने अपने को अकेला, अजनबी, असहाय, संत्रस्त और टूटा हुआ अनुभव किया। उसने नैतिक मूल्यों की धज्जियां उड़ती देखी। आस्था उसे वंचना प्रतीत हुई। उसने नगरों को शमशान और संस्कृति के प्रतीकों को ध्वस्त होते हुए देखा। उसे मनुष्य पशु से भी नीच और हिंसक दिखाई पड़ा। उसने अनुभव किया कि मनुष्य के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है और वह मृत्यु के लिए अभिशप्त है। इस परिस्थिति में अस्तित्ववादी दर्शन अधिक प्रासंगिक होता। कार्ल यास्पर्स 1883 से 1974 ईस्वी, मार्टिन हाइडेगर 1889 से 1978 ईस्वी और जान पाल सात्रे 1905 ईस्वी ने नए संदर्भ में इसकी व्याख्या की। प्रयोग काल के बाद नई कविता 1954 ईस्वी के बाद के दौर में इस दर्शन से ही हिंदी कवि प्रभावित हुए और उनकी रचनाओं में आधुनिक भावबोध का प्रतिफलन साफ साफ दिखाई पड़ने लगा। आधुनिक भावबोध का एक सकारात्मक पक्ष भी है। माना कि आज का मनुष्य यांत्रिक सभ्यता के दबाव में अपनी पहचान खो चुका है। वह निराशा और उदास है। उसे अपनी लघुता और व्यर्थता का एहसास है और वह समाज के विसंगतिपूर्ण जीवन से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं देख पा रहा है, तो क्या उसका पुरुषार्थ गहन उदासी में डूब जाने और जीवन को निरुद्देश मान लेने तक ही सीमित है? मुक्तिबोध इसे नकारते हैं। वे कहते हैं, मैं अपने खुद की जिंदगी और दोस्तों की जिंदगी के तजुर्बे से बता सकता हूँ कि अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करना आधुनिक भावबोध के अंतर्गत है। आधुनिक भावबोध के अंतर्गत यह भी है कि मानवता के भविष्य निर्माण के संघर्ष में हम और भी अधिक दायित्व दत्त चित्त हो तथा हम वर्तमान परिस्थिति को सुधारे, नैतिक ह्रास को थामे, उत्पीड़ित मनुष्य के साथ एकात्मक होकर उसकी मुक्ति की उपाय योजना करें। मानवता के भविष्य की स्थापना विकृत स्वार्थवाद और भ्रष्टाचार के विरोध, सामाजिक संबंधों में प्रेम और त्याग की भावना, अहंकार की उग्रता के विरोध जैसी बुनियादी बातों को एक व्यापक जीवन दर्शन में समाहित करके काव्य में उस जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति भी की जा सकती है और इस प्रकार आधुनिक भावबोध को गहन निराशा एवं निरुद्देश्यता के अंधकार से निकालकर एक सकारात्मक जीवन प्रक्रिया का रूप दिया जा सकता है। किंतु मुक्तिबोध भी यह अनुभव करते हैं कि वास्तविक जीवन क्षेत्र में अनुभूत किए जाने वाले तड़पते छटपटाते हुए भाव संवेदनों को नया कवि काव्य स्तर पर इसलिए नहीं उठा पाता है कि इन भाव संवेदनाओं के अनुकूल तदनुसारी कलात्मक उपादान और संवेदनशील कलात्मक भाषा का विकास उसने नहीं किया है। तात्पर्य यह है कि प्रयोग काल से लेकर नई कविता की प्रतिष्ठा तक के दौर में नया कवि संवेदना के स्तर पर अनुभूत नए जटिल भावबोध आधुनिक भावबोध की अभिव्यक्ति के प्रयत्न में नए कलात्मक उपादानों और नई संवेदनशील कलात्मक भाषा को विकसित करता रहा है और सब मिलाकर नई कविता जटिल और दीक्षा गम्य हो गई है। सन 1959 में श्री शिक्षायतन कॉलेज कलकत्ता द्वारा आधुनिक साहित्य बोध पर आयोजित एक परिसंवाद में डॉक्टर नामवर सिंह ने कहा था, जटिलता के प्रति आधुनिक साहित्यकार की एक यह आत्मा सजगता ही आधुनिक साहित्य को पूर्ववर्ती साहित्य से अलग करती है और संभवतः उसे अपेक्षाकृत जटिल भी बना देती है। इस नए आधुनिक जटिल भावबोध और तदनुकूल जटिल कलात्मक उपादानों से युक्त संश्लिष्ट काव्य भाषा वाली नई कविता के समानांतर नई समीक्षा का विकास हुआ। पश्चिम में यह प्रक्रिया बहुत पहले शुरू हो गई थी। वहां काव्य भाषा को ऐसा रूप देने का प्रयत्न किया गया था कि वह विचार काव्य के स्थान पर वस्तु काव्य को प्रतिष्ठित कर सके। बिंबवाद, प्रतीकवाद और धनवाद जैसे आंदोलन इसी प्रयत्न के परिणाम थे। आलोचना के क्षेत्र में टी एस इलियट 1888 से 1965 जब अपना प्रसिद्ध निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो उसने एक प्रकार से काव्यास्वाद की प्रक्रिया को मनोवैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाने की ही कोशिश की थी। उसने कहा था, द प्रोग्रेस ऑफ एन आर्टिस्ट इज ए कंटिन्यूअल सेल्फ सैक्रिफाइस, ए कंटिन्यूअल एक्सटिंक्शन ऑफ पर्सनालिटी। इट इज इन दिस डेपर्सोनलाइजेशन that art may be said to approach the condition of science। स्पष्ट है कि उसके सामने कला को विज्ञान की स्थिति में लाने की चुनौती थी। विचार पूर्वक देखा जाए तो नई समीक्षा इसी चुनौती को स्वीकार करने की परिणति है। हिंदी में जब जटिल अनुभूतियों वाली नई कविता के विवेचन और मूल्यांकन का प्रश्न उठा, तो छायावादी संस्कारों युक्त सौष्ठववादी समीक्षा व्यर्थ सिद्ध हुई। परंपरागत शास्त्रीय प्रतिमानों में रस अप्रासंगिक प्रमाणित तो हो गया। ध्वनि और वक्रोक्ति की उपयोगिता एक सीमा तक स्वीकार्य हुई, किंतु नए संदर्भ में इन के पुराना पुनराख्यान की आवश्यकता का अनुभव किया गया। मार्क्सवादी समीक्षकों के लिए रचना की पूर्ण स्वायत्तता स्वीकार करना संभव नहीं था, इसलिए आरंभिक दौर में इसके प्रति उनका रुख नकारात्मक बना रहा। ऐसी स्थिति में कविता के नए प्रतिमान की खोज में आंग्ल अमेरिकी साहित्य के में प्रतिष्ठित नई समीक्षा से प्रेरणा और प्रभाव ग्रहण करना स्वाभाविक था। अतः हिंदी की नई समीक्षा पर विचार करने के पूर्व आंग्ल अमेरिकी नई समीक्षा का परिचय अप्रासंगिक न होगा। सबसे पहले कोलंबिया विश्वविद्यालय के तुलनात्मक साहित्य के प्रोफेसर स्पिनगार्न ने 1911 ईस्वी में नई समीक्षा शीर्षक एक शोध पत्र लिखा। यह शोध पत्र 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इस शोध पत्र में स्पिन गार्ग ने क्लासिकल, रोमांटिक, समाजशास्त्रीय, जीवन मूलक आदि समीक्षा पद्धतियों को अस्वीकार करते हुए यह स्थापित किया था कि समीक्षा वस्तुतः एक प्रकार की वैयक्तिक प्रतिक्रिया है जो जीवंत अंतर्दृष्टि पर आधारित होती है। आगे चलकर नए समीक्षकों में स्पिन गार्ग का दिया हुआ यह नाम स्वीकार कर लिया। निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि किस तिथि को नई समीक्षा का जन्म हुआ, किंतु यह निश्चित है कि T.S. इलियट की दी सीग्रेड वुड 1920 ईस्वी, मिडल्टन मरे की दी प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल 1922 ईस्वी और आई ए रिचर्ड्स की प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी जैसी कृतियों के माध्यम से इसके आधार तत्वों का विकास हुआ। कहना न होगा कि रिचर्ड्स और इलियट दोनों ही इस बात पर बल देते थे कि समीक्षक का ध्यान मुख्य रूप से कविता पर ही केंद्रित होना चाहिए। दोनों ही इतर बातों से हटकर कविता के विश्लेषण, व्याख्या और मूल्यांकन पर बल देते हैं। आगे चलकर नए समीक्षकों ने जब रचना को पूर्णतः स्वायत्त भाषिक संरचना माना, तो उन्होंने भी उसके भाषिक विश्लेषण पर ही बल दिया। संभवतः इसलिए रिचर्ड्स को अमेरिका में नई समीक्षा का जनक स्वीकार किया जाता है। नई समीक्षा को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने वाले जान क्रो रेंसम ने कहा कि रिचर्ड्स से ही नई समीक्षा की शुरुआत हुई है। इन हिज पेपर इन टाइटल्ड न्यू क्रिटिसिज्म पब्लिश्ड इन 1913 स्पिन गार्न एक्सप्रेस्ड डिस्प्रोवल ऑफ द वेरियस करेंट मोड्स ऑफ इवेल्युएशन सच एज क्लासिकल, रोमांटिक, सोशियोलॉजिकल, बायोग्राफिकल ETC एंड मेंटेन दैट क्रिटिसिज्म वॉज रियली कंसर्न्ड विथ सब्जेक्टिव रिएक्शन एंड वॉज इन फैक्ट डिपेंडेंट ऑन विवाइड इंट्यूशन। लिटरेरी क्रिटिसिज्म पेज नंबर 432। ऑल दो इट इज नॉट पब्लिश्ड टू पॉइंट आउट विथ डिफिनेशनेस द एग्जैक्ट डेट ऑन विच न्यू क्रिटिसिज्म टुक बर्थ, इट्स ओरिजिन कैन बी ट्रेस्ड इन सच बुक्स एज द स्क्रेड वुड 1920 ईस्वी बाई T.S. इलियट, द प्रॉब्लम ऑफ स्टाइल 1922 ईस्वी बाई मिडल्टन मरी एंड प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 ईस्वी बाई आई ए रिचर्ड्स, ऐसे इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म पेज नंबर 37, वी वाज एक्नॉलेज्ड एज ए पेटर फैमिलीज बाय द न्यू क्रिटिक इन अमेरिका, वन ऑफ हुम जॉन क्रो रैंसम सेड दैट द न्यू क्रिटिसिज्म बिगैन विथ हिम इन द राइट वे बिकॉज ही अटेम्प्ट टू फाइंड इट ऑन मोर कंप्रेहेंसिव बेसिस देन अदर क्रिटिक डाइड 20th century लिटरेरी क्रिटिसिज्म पेज नंबर 51-52। विलियम एम्सन ने तो अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स वर्ड को यह कहकर उसे समर्पित की है कि इसमें जो भी उद्भावनाएं हैं उसका आदि स्रोत वही है। 1941 ईस्वी में जॉन क्रो रैंसम की नई आलोचना नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। यहीं से नई समीक्षा को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। रैंसम के अतिरिक्त एलन टेट, रॉबर्ट पेन वारेन, आर पी ब्लैकमर, आइवर विंटर और क्लिंथ ब्रुक्स नए समीक्षकों में प्रमुख माने जाते हैं। इन सभी समीक्षकों ने कविता पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए उसके भाषिक विश्लेषण पर बल दिया और उसकी अलग-अलग विशेषताओं को लक्षित किया। रैमसम के अनुसार कविता की रूप रचना में शब्द विधान टेक्सचर और अर्थ विधान स्ट्रक्चर दोनों का संश्लेष होता है। शब्द विधान बिंबात्मक होता है और अर्थ विधान विचारात्मक। इन दोनों का तनाव ही काव्य भाषा को अपेक्षित भंगिमा प्रदान करता है। उसने लक्षित किया था कि इलियट की प्रसिद्ध कविता दी वेस्टलैंड में इसका अभाव है, जिसमें कविता का सौंदर्य नष्ट हो गया है। टेट के अनुसार कविता का अस्तित्व जिस संतुलन पर स्थित होता है वह उसके बहिरंग संतुलन एक्सटेंशन और अंतरंग इंटेंशन के बीच घटित होता है। टेट ने यहाँ संतुलन टेंशन शब्द का प्रयोग बहिरंग संतुलन अभिधेयार्थ को प्रकट करने वाला है और अंतरंग संतुलन लक्ष्यार्थ को प्रकट करने वाले के मध्य पूर्ण सामंजस्य के अर्थ में किया गया है। रॉबर्ट पेन वारेन की ख्याति आलोचक से अधिक कवि और उपन्यासकार के रूप में है, फिर भी उनकी समीक्षा में संयम और विश्लेषण की प्रवृत्ति प्रधान है। उसने काव्य भाषा में व्यंग, विरोधाभास और प्रतीक पर विशेष बल दिया है। उसने कहा, कवि अपनी दृष्टि को आयरनी की अग्नि में, अर्थ विधान के नाटकीय व्यापार में समर्पित करके अपने उद्देश्य की सिद्धि करता है और ऐसा वह इस आशा से करता है कि अग्नि में पकड़कर वह शुद्ध हो जाएगी। ब्लैकमर ने सबसे अधिक महत्व जेस्चर को दिया है। उसके अनुसार सांकेतिकता की ही काव्य भाषा का प्रधान गुण है, क्योंकि इसमें गति होती है। जहाँ अविधा की भाषा समाप्त हो जाती है वहाँ सांकेतिक भाषा लैंग्वेज ऑफ जेस्चर कार्य करती है। आइवर विंटर का दृष्टिकोण नए समीक्षकों से भिन्न है। वह स्वभाव से नैतिक था। नए समीक्षकों में उसकी गणना इसलिए की जाती है कि वह भी साहित्य कृतियों की स्वतंत्र सत्ता मानता है और समीक्षा की विश्लेषण पद्धति का प्रयोग करता है। उसके अनुसार कवि अपनी भाषा में अविधार्थ और लक्ष्यार्थ का गुण संश्लेष उपस्थित करता है। द पोयम आ हैज ए लोकल टेक्सचर एज वेल एज ए लूज लॉजिकल स्ट्रक्चर विच अकॉर्डिंग टू हिम मैरिड द ब्यूटी ऑफ द पोयम। द 20th century लिटरेरी क्रिटिसिज्म पेज नंबर 105। What I am saying, of course, is that the meaning of poetry is it tension, the full organized body of all the extension and intention what we can find in it. Literary criticism, page number 437. The poet somewhat less spectually proves his vision by submitting it to the fire of iron, to the drama of his structure, in the hopes that fires will refine it. 20th century literary criticism, पेज नंबर 107। टेट की भांति वह भी कविता की अवयविक एकता पर बल देता है और उसे शब्दों के अंतः संबंधों का ऐसा गूढ़ संश्लेष मानता है जो अंतर्वस्तु की तर्कपूर्ण योजना, स्वरों की सुसंयोजित गति, लय, सानिध्य, विपर्यय आदि पर आधारित होता है। क्लिंथ ब्रुक्स विसंगति पैराडॉक्स को काव्य भाषा का प्रधान गुण मानता है। उसके अनुसार विसंगति की ही किसी कविता की संरचनात्मक ढांचे का मूल आधार है। वह कहता है कविता की प्रविधि व्यंजनात्मक और अप्रत्यक्ष होती है और वह बिंबों, रूपकों, प्रतीकों, चित्रों और स्थितियों के माध्यम से नाटकीय रूप में अर्थ प्रकाशन करती है। नई समीक्षा के अन्य उन्नायक विलियम एम्पसन ने अनेकार्थता एम्बिग्यूटी को काव्य भाषा का प्राण तत्व स्वीकार किया। उसने अनेकार्थ के 7 प्रकारों का उल्लेख करके उनका संबंध कविता में व्यक्त जटिल मन स्थितियों और उनके विविध स्तरों से जोड़ा। इस प्रकार उसने रिचर्ड्स द्वारा आरंभ किए गए अर्थतात्विक अध्ययन की परंपरा को आगे बढ़ाया। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नई समीक्षा के प्रतिष्ठापक और उन्नायक काव्य भाषा के तात्विक विवेचन में एक मत नहीं है, किंतु नई समीक्षा की मूल प्रतिज्ञा काव्य स्वतः वस्तु है को लेकर उनमें पूर्ण सहमति है। नई समीक्षा जिन आधारभूत बातों पर बल देती है वे निम्नलिखित हैं। पहला, काव्य भाषिक संरचना मात्र है, इसलिए भाषा के सृजनात्मक तत्वों का विश्लेषण ही समीक्षा का मुख्य धर्म है। दूसरा, ऐतिहासिक, समाजशास्त्रीय, दार्शनिक एवं मनोविश्लेषणवादी समीक्षाएं अनावश्यक एवं अप्रासंगिक हैं। तीसरा, संप्रेषण और आस्वाद के प्रश्न पर विचार तथा मूल्यांकन का प्रयत्न आवश्यक नहीं है। चौथा, रचना की आंतरिक संगति और संश्लिष्ट विधान के विवेचन विश्लेषण के लिए उसका गहन पाठ नितांत आवश्यक है। नई समीक्षा की सीमाओं का बोध स्वयं अमेरिकी समीक्षकों को बहुत शीघ्र ही हो गया। 1952 ईस्वी तक आते आते शिकागो स्कूल के आलोचकों ने आर एम क्रेन के नेतृत्व में नए समीक्षकों का विरोध किया। उन्होंने प्रमाणित किया कि नई समीक्षा के औजारों से इस पर छोटी कविताओं का विश्लेषण भले कर लिया जाए, किंतु प्रबंध काव्यों, नाटकों और कथा कृतियों की समीक्षा के लिए वे बहुत उपयोगी नहीं है। शिकागो स्कूल के समीक्षकों की सबसे बड़ी आपत्ति यह थी कि यदि वस्तुपरक विश्लेषण द्वारा विज्ञान के समक्ष मानविकी की प्रतिष्ठा के अतिरिक्त उत्साह में आलोचना गणित और विज्ञान बन जाती है तो इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है। आलोचना मानविकी का ही एक विषय है। वैज्ञानिक बनाने के प्रयत्न से में इसे इसकी मूल प्रकृति से अलग कर देना उचित है। लाइक टेट द ऑर्गेनिक यूनिटी ऑफ द पोयम विच इज ए कॉम्प्लेक्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स डिपेंडिंग ऑन रिलेशनल कंटेंट कैंडेंस रिदम जक्स्टा पोजिशन इनवर्जन एंड सो ऑन 20th century लिटरेरी क्रिटिसिज्म द मोस्ट फंडामेंटल ऑब्जेक्शन ऑफ द शिकागो स्कूल टू द प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज ऑफ द न्यू क्रिटिसिज्म इज दैट इन देयर एंथिसियम टू रिहैबिलिटेट ह्यूमैनिटीज दे सो टू रिड्यूस लिटरेरी क्रिटिसिज्म टू द स्टैच्यूज द ऑफ फिजिकल साइंस एट द कॉस्ट ऑफ इट्स कैरेक्टर एज ए डिसिप्लिन इन ह्यूमैनिटीज ऐसे इन मॉडर्न क्रिटिसिज्म पेज नंबर 56 इट इज एन एनालिटिकल साइंस विच कवर्स ऑफ ऑल द एक्सप्रेसिव एक्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज फोनोलॉजी प्रोसोडी मॉर्फोलॉजी सिंटैक्स एंड लेक्सियोलॉजी ए डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म जे ए कुडन पेज नंबर 663। नई समीक्षा की भांति कृति को स्वायत्त मानने वाली एक अन्य समीक्षा पद्धति शैली विज्ञान भी है। शैली विज्ञान भाषिक विश्लेषण की वह मनोवैज्ञानिक पद्धति है जिसमें भाषा के सभी अभिव्यंजक उपादानों ध्वनि विज्ञान छंद शास्त्र पद विज्ञान वाक्य विज्ञान शब्द शास्त्र का समावेश किया गया है। अपने विकसित रूप में शैली विज्ञान एक और अपने सिद्धांत तंत्र के दृष्टि से भाषा विज्ञान संरचनावाद और संकेतार्थ विज्ञान सिमियोटिक्स से जुड़कर अपने को सम्यक रूप में स्वरूपित कर पा रहा है तो दूसरी ओर प्रकार की दृष्टि से साहित्य विश्लेषण और साहित्यालोचन की विशिष्ट प्रणाली के रूप में उपस्थित हो रहा है। नई समीक्षा और शैली विज्ञान में अंतर यह है कि शैली विज्ञान भाषा विज्ञान का पूरा पूरा आधार ग्रहण करके विश्लेषण में प्रवृत्त होता है जबकि नई समीक्षा ऐसा नहीं करती। उसमें विसंगति विडंबना व्यंग अनेकार्थ संकेतार्थ संतुलन आदि जिन औजारों का प्रयोग किया जाता है वे भाषा विज्ञान के औजार नहीं है। उनका संबंध काव्य न्याय लॉजिक ऑफ पोएट्री से है। कुछ भी हो हिंदी में शैली विज्ञान आलोचना को विशेष महत्व नहीं दिया गया। प्रख्यात शैली वैज्ञानिक समीक्षक रविंद्र श्रीवास्तव द्वारा केदारनाथ सिंह की प्रसिद्ध कविता इस अनागत का क्या करें कि जो शैली वैज्ञानिक आलोचना की गई है उसकी परीक्षा करने के बाद डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं स्पष्ट है कि विवरणात्मक शैली वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर वाक्यों उपवाक्यों संज्ञा सर्वनाम पद पदबंध आदि के माध्यम से कविता की जो परीक्षा की गई है वह उसकी 100 परीक्षा बन जाती है। इसमें जिस व्याकरण की सहायता ली गई है वह कविता को छोटे छोटे खंडों में काट तो देता है पर उसे संश्लेषित नहीं कर पाता। इस व्यवच्छेदन व्यापार से मूल्यांकन का संबंध निश्चय हो जाता है। यह टिप्पणी शैली वैज्ञानिक समीक्षा की सीमाओं को स्पष्ट कर देती है। शैली वैज्ञानिक आलोचक डॉक्टर रविंद्रनाथ शर्मा का श्रीवास्तव का इसका प्रतिवाद करते हैं। वे कहते हैं काव्य कृति को स्वायत्त मानने का अर्थ विश्लेषण और परीक्षा आधारशिला तथा मूल केंद्रक के रूप में जो स्वयं स्वीकृत की कृति है, अतः आलोचक के लिए यह जरूरी है कि वह पहले इसी आधार बिंदु के से आगे बढ़े, पर इस दृष्टि की, इस समग्रता की मांग को भी उसे नहीं भूलना चाहिए कि इस आधार बिंदु से ऊपर उठकर उसे साहित्यिक और सांस्कृतिक समग्रता की पृष्ठभूमि में रखकर कृति को एक संश्लिष्ट घटक के रूप में देखना है। वस्तुतः प्रश्न समग्रता की प्रश्न सिद्धांत का नहीं, व्यवहार का है, और व्यवहार के धरातल पर हिंदी में शैली वैज्ञानिक आलोचना अभी अपनी मूल्यवत्ता प्रमाणित नहीं कर सकी है। शैली विज्ञान के साथ ही संरचनावाद को उल्लेख प्रासंगिक है। संरचनावाद के अनुसार साहित्य शाब्दिक रचना है, संरचना है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु कई घटक तत्वों के संश्लेष से निर्मित होती है। ये घटक एक ओर परंपरा संबद्ध होते हैं, दूसरी ओर पूर्ण निर्मित अवयवी के साथ उनका संतुलित संश्लेष होता है। साहित्य शाब्दिक संश्लेष है। संरचनावाद की अवधारणा का मूल स्रोत जेनेवा और पेरिस में भाषा विज्ञान के प्रोफेसर फर्दिनांड डी सस्यूर 1857 ईस्वी से 1913 ईस्वी द्वारा प्रतिपादित भाषा सिद्धांत है। सस्यूर के अनुसार भाषा के दो रूप हैं, एक ल लांग, दूसरा ल परहुल। ल लांग को अंतर्वैयक्तिक भाषा व्यवस्था कह सकते हैं। ल परोल को व्यक्ति विशेष की भाषा कहा जा सकता है। लांग अंतः संबंधी प्रतीकों की ऐसी सामान्य व्यवस्था है जो पूरे समाज में वैचारिक संप्रेषण संभव बनाती है। यह व्यवस्था भाषा समुदाय के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य है। परोल का क्षेत्र सीमित है, व्यक्ति भेद से उसका रूप बदल जाता है। क का परोल ख से भिन्न होता है। परोल वैज्ञानिक होने के साथ ही स्वच्छंद और परिवर्तनशील भी है, उसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव नहीं है। लांग के ही नियमों से परोल नियंत्रित होता रहता है। परोल व्यक्ति भाषा के रूप में ही लांग खंडशः मूर्त होता है। परोल के आधार पर भाषा के नियमों का अनुसंधान ही संरचना है। प्रसिद्ध नृत्यवेत्ता लेवी स्ट्रॉस ने इसी सिद्धांत को मिथकों के अध्ययन पर लागू किया है। उसके अनुसार मूल मिथक लांग है तो उसके अलग अलग रूप परोल हैं। मिथक से के अलग अलग रूपों के अध्ययन के बल पर मूल मिथक से सिद्धांत स्पष्ट किए जा सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में सिद्धांत को रोला बार्थ ने प्रश्रय दिया। संरचनावाद के अनुसार हमें साहित्यिक कृति को एक विशिष्ट एकता से युक्त संपूर्ण संरचना के रूप में देखना चाहिए। यह संपूर्ण संरचना परत दर परत इतनी जटिल होती है कि इसे अंगभूत उप संरचनाओं, ध्वनि, छंद, बिंब, पद विन्यास आदि के गुंभ के रूप में देखा जा सकता है। कृति विशेष की जटिल संरचना के विश्लेषण से प्राप्त सिद्धांतों के आधार पर अंततः साहित्य मात्र की संरचना के मूल सिद्धांतों का अन्वेषण संरचनावाद का लक्ष्य है। इसके साथ ही संरचनावादी उन मानसिक क्रियाओं का अन्वेषण भी करना चाहते हैं जो कृति विशेष को पढ़ते समय उसे समझने के प्रयत्न में पाठकों द्वारा आम तौर पर अनजाने ही निष्पादित होती है। यह होने पर भी संरचनावाद के लिए संरचना केवल शाब्दिक या भाषिक संरचना है, इसलिए रचनाकार के वैचारिक भावात्मक अभिप्राय का विवेचन संरचनावाद के अंतर्गत नहीं आता। ऐसी स्थिति में सब मिलाकर संरचनावाद का झुकाव रूपवाद की ओर होना स्वाभाविक है। हिंदी में अभी इस सिद्धांत की सैद्धांतिक चर्चा मात्र आरंभ हुई है। किसी रचना का संरचनावादी सिद्धांतों के आधार पर विश्लेषण करके उसके निहितार्थ को स्पष्ट किया गया हो तो ऐसा देखने में नहीं आया। हिंदी में नई समीक्षा ठीक उसी रूप में नहीं आई जिस रूप में अमेरिकी नए समीक्षकों ने उसे प्रतिष्ठित किया था। हिंदी के नए समीक्षकों ने काव्य के संदर्भ में भाषा के महत्व को स्वीकार किया, उसकी सृजनात्मक विशेषताओं को लक्षित करने की चेष्टा की। कवि के अनुभव संसार के विस्तार और भाषा संसार के प्रसार की समानांतरता का निरूपण किया। काव्य भाषा के संदर्भ में बिंब वैविध्य तनाव विसंगति और विडंबना के महत्व को स्पष्ट करने की कोशिश की। शब्द प्रयोग एवं ध्वनि संयोजन से उत्पन्न चमत्कार को सराहा। काव्य के रूप पक्ष और संवेद्य तत्व की संश्लिष्टता को स्वीकार किया। रचनाओं के गहन पाठ को महत्व दिया किंतु कविता को पूर्णतः ऐतिहासिक संदर्भ में से काट कर देखने के आग्रह को स्वीकार अस्वीकार कर दिया। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षकों ने भी रचना की स्वायत्तता को सम्मान देते हुए उसकी सापेक्षिक स्वायत्तता का प्रतिपादन किया और रूप तत्व के विवेचन के महत्व को स्वीकारा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे प्रखर मार्क्सवादी समीक्षक ने भी निराला की समीक्षा करते हुए उसके काव्य शिल्प का सूक्ष्म और विस्तृत विवेचन किया है। उन्होंने निराला की कविताओं को उद्धृत करते हुए उनकी रचना पद्धति का विश्लेषण किया है। स्थापत्य की सराहना की है। स्थापत्य के नियामक तत्वों विवेक और स्वप्न दृष्टि को लक्षित किया है। रूप रस गंध स्पर्श और शब्द को ग्रहण करने वाली वृत्तियों के आधार पर उनकी कविताओं के मूर्त विधान की व्याख्या की है तथा उनकी प्रतीक योजना संश्लिष्ट बिंब रचना अनुप्रास प्रेम ध्वनि प्रवाह स्वर साधना शब्द योजना छंद विधान अलंकरण अर्थ चमत्कार गीति रचना कौशल आदि की विस्तृत समीक्षा की है। जहाँ स्मरणीय है कि डॉक्टर शर्मा मूलतः रचनाकार की विचारधारा की परख करने वाले समीक्षक रहे हैं। निराला के शिल्प का विवेचन उन्होंने निराला की काव्य भाषा के गहन और गंभीर अध्ययन के आधार पर ही किया है। काव्य भाषा के गहन पाठ की जब प्रेरणा नई समीक्षा के व्यापक प्रभाव से प्राप्त हुई तो आश्चर्य नहीं है। हिंदी आलोचना का विकास समाप्त। हिंदी आलोचना का विकास समाप्त।